समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम हमेशा समाधान का हिस्सा बने, न कि समस्या का। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामाचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग टू यू एंड हेलो देयर लिसनर्स। Have a hap, 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 happy Sunday today. So just chill it out and join us for this session of Art Saveri, loaded with plenty of infotainment. For starters, Mukesh, let's give them some news headlines.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग UER का दूसरा खंड शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली में बुनियादी ढांचे का विकास कर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़ भाड़ कम करने के लिए विकसित की गई हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली और आसपास के इलाकों में संपर्क में उल्लेखनीय सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात को सुगम बनाना है। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10 किलोमीटर से अधिक लंबे दिल्ली खंड का निर्माण 5,360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये खंड यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आगामी रेलवे स्टेशन तथा द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। UER सेकंड के अलीपुर से ढिचाओं कला खंड का निर्माण बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए लिंक के साथ लगभग 5,580 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
A meeting of the BJP parliamentary board is expected to be held at the party headquarters in New Delhi today. All parliamentary board members of the party will attend the meeting. Party sources said discussions are likely to be held on the candidate for the vice presidential elections. On the 6th of this month, leaders of the ruling National Democratic Alliance, NDA, had unanimously passed a resolution authorizing Prime Minister Narendra Modi and BJP President Jagat Prakash Nadda to finalize the NDA's candidate for the vice presidential election. The NDA enjoys a comfortable majority in the Electoral College, which includes members of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Nominations for the vice presidential election can be filed till Thursday.
भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ वी नारायण ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री शुक्ला 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु ने नासा के एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व किया था। इसे 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। मिशन के दौरान शुभांशु ने अंतरिक्ष में अभूतपूर्व सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। शुभांशु भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। इसे अगले वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है।
The Election Commission of India, ECI, has said that utmost transparency is the hallmark of electoral roll preparation as per law, rules and guidelines. In a statement, the poll body said that political parties were involved at every stage of preparing electoral rolls, which is a multi-stage exercise. The ECI has criticized political parties and individuals for raising concerns over alleged errors in electoral rolls from previous elections. The poll body said that the appropriate time to raise any issue with the electoral rolls would have been during the claims and objections period of that phase, which is precisely the objective behind sharing the electoral rolls with all political parties and the candidates. The Election Commission clarified that Had such issues been flagged during the stipulated time, they could have been examined and, if genuine, corrected by the electoral registration officers before the elections. The Commission also highlighted that several political parties and their booth-level agents failed to review the draft rolls during the appropriate time and did not raise objections.
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के तुलना में 47% से अधिक की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता के कारण पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 31 अरब डॉलर से बढ़कर 133 अरब डॉलर हो गया है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल विनिर्माण इकाइयों की संख्या 300 से अधिक हो गई है, जबकि 2014 में इनकी संख्या महज 2 थी। उन्होंने कहा कि भारत अब मोबाइल आयातक नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। श्री गोयल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर पैदा हुए हैं।
India Meteorological Department IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Madhya Maharashtra, Konkan, Goa and Telangana today. The IMD forecast extreme heavy rainfall conditions over some parts of coastal Karnataka, south interior Karnataka, west Madhya Pradesh and Gujarat tomorrow. The weather agency had also predicted heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Mahe, coastal Andhra Pradesh, Yanam during the next 2 days. According to the Met Department, Delhi NCR is expected to witness light rainfall conditions during the next 2 to 3 days. And now, friends, we have news from the world of sports.
In badminton, Indian shuttler Tanya Hemant clinched the women's singles crown at the Saipan International 2025 in the Northern Mariana Islands. The top seed, ranked 86th in the world, defeated Japan's Kane Sakai 2-0 in the finals yesterday under the Badminton World Federation's new 3-15 scoring format. This is Tanya's first international challenge of the year and the fourth of her career. In squash, India's Anahat Singh will take on second-seeded Habiba Hani of Egypt in the finals of the Bega Open in Australia today. Top seed Anahat defeated Egypt's Noor Kafagi 3-2 in the semi-finals yesterday. Despite an injury during the match, Anahat showed great determination to outlast Kafagi. With 12 PSA titles from 18 events, Anahat is emerging as a dominant force on the squash circuit. On to football. Mohun Bagan Giant are all set to take on East Bengal in the quarterfinals of the Durand Cup in Kolkata today. The match will kick off at 7 PM Indian Standard Time. Mohun Bagan are aiming for their 18th Durand Cup title while East Bengal seeks to win their 17th. In another quarterfinals clash, Jamshedpur FC will take on Diamond Harbour FC today at 4 PM. The winner of both these matches will advance to the semi-finals. Sanyukta Yadav, Sports Desk.
श्रोताओं, अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले हाल दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार यमुना के अविरल और निर्बल प्रवाह को बहाल करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और मान्यताओं में यमुना का महत्व अधिक है और ये लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों और श्रद्धालुओं से एक स्वच्छ और अविरल यमुना के सपने को साकार करने के लिए जन भागीदारी के लिए आग्रह किया।
यमुना जी प्रभु श्री कृष्ण का दिया हुआ वो हमारे लिए अध्याय है, वो हमारी आस्था है, हमारे मन के नजदीक है। हर एक को अपने अंदर प्रभु कृष्ण का कुछ ना कुछ अंश लिए हुए यमुना की सफाई की ओर ध्यान देना होगा। सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है माँ यमुना के अविरल रूप को फिर से दिल्ली में लाने के लिए।
दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम MCD ने अब तक शहर से 10,000 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया है। नगर निगम ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 1 से 14 अगस्त तक उन्होंने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। MCD ने व्यापक कचरा संग्रहण और प्रबंधन के लिए प्रतिदिन औसतन 12,000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट और रेलवे पटरियों के आसपास से करीब 690 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उठाया है। वहीं शहर के सौंदर्यीकरण हेतु 35,000 से अधिक पोस्टर और बैनर सार्वजनिक स्थलों से हटाए गए हैं तथा 160 दीवारों का सौंदर्यीकरण किया गया है। हरित आवरण और वृक्षारोपण पहल के अंतर्गत MCD ने 6 से 8 अगस्त तक लगभग 30,000 वृक्षारोपण अभियान चलाए जिससे दिल्ली के हरित आवरण को सुदृढ़ किया गया। इसके अतिरिक्त जन जागरूकता और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 419 जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया और करीब 2,61,000 नागरिकों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। नगर निगम ने बताया कि यह अभियान दिल्ली को एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ शहर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान व्यापक स्वच्छता अभियानों, बड़े पैमाने पर जन सहभागिता तथा लक्षित कचरा प्रबंधन रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसके अलावा श्रोताओं, दिल्ली पुलिस ने शहर में प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चीनी मांझे के 68 रोल बरामद किए हैं। खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस की अपराध शाखा ने न्यू सीलमपुर और संगम विहार स्थित दुकानों से मांझे के रोल जब्त किए। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई पतंगबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए की गई है, जो नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और अब हाल मुंबई के समाचारों का। तो श्रोताओं, कल तेज बारिश के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र में दही हांडी उत्सव मनाया गया, जहां गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे लटके दही से आखिरी मटके तोड़ने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही थीं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल उत्तरी मुंबई में दही हांडी उत्सव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि दही हांडी परंपरा एकता और वीरता का उत्सव है। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्थित मध्य रेलवे की पार्सल कार्यालय टीम ने रेलवे की पार्सल बुकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के परिवहन का पता लगाया है। शुक्रवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर गाड़ी संख्या 12168 बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस से आए पार्सल की नियमित जांच के दौरान पार्सल कार्यालय दल ने वाराणसी से बुक किए गए 3 पैकेजों को निगरानी में लिया। बुकिंग पर्चियों में पैक किए गए सामान माउथ फ्रेशनर के रूप में दिखाए गए थे। हालांकि विस्तृत जांच से पता चला है कि पैकेजों में लगभग 7,00,000 रुपए मूल्य के सिगरेट के पैकेट थे। मामले में अभी कार्रवाई जारी है। और अब बात कोलकाता की। कोलकाता में कल राजनीतिक तनाव की स्थिति देखने को मिली। तनाव की मुख्य वजह एक होटल में द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर के प्रदर्शन पर रोक लगाना रही। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द बंगाल फाइल 16 अगस्त 1946 की कलकत्ता हत्याकांड सांप्रदायिक हिंसा की घटना पर आधारित है, जो जिन्ना द्वारा 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किए जाने के बाद घटित हुई थी। आरोप है कि होटल प्रशासन ने फिल्म के प्रदर्शन को रोका, जिसे होटल प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया। घटना के बाद कोलकाता पुलिस के अधिकारी होटल पहुंचे। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस घटना में राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के दबाव के कारण फिल्म के ट्रेलर के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। ये दूसरी बार है जब पश्चिम बंगाल में ट्रेलर के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। भाजपा ने इस घटना में तृणमूल कांग्रेस की कथित संलिप्तता की आलोचना की है। और श्रोताओं, अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों के साथ हैं सुभद्रा।
यस, थैंक यू मुकेश। स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। Chennai Unified Metropolitan Transport Authority will roll out a single ticketing app in the first week of September to integrate Metro Rail, MTC buses, Namayatri autos and cabs. MRTS and suburban trains will be added later this year. While cities like Mumbai and Bengaluru already have integrated ticketing for buses and metros, Chennai's app will make it the first initiative in India to bring cabs, autos, buses, metros and trains onto one platform. The project, costing around 8.75 crore rupees in labour and establishment expenses, is backed by a primary contract with Namayatri and MOUs with MTC and CMRL. We have another news from Chennai. The Madras High Court has said that in the absence of an adoption deed necessary for issuing a legal heir certificate to the adopted persons, authorities should consider other relevant documents and make a decision. Justice N. Anand Venkatesh disposed of a petition whose online application for a legal heir certificate was rejected by a tehsildar and said that even though the petitioner did not have an adoption deed, there were other documents that confirm the identity of the adopted parents who are no more. Bengaluru news now. The Gulbarga Mystics registered a 10-wicket victory over the Shivamogga Lions at the Maharaja Trophy held in Mysuru yesterday. Shivamogga had scored 127 runs, losing 5 wickets in 15.5 overs when rain stopped the play. The score was fixed at 92 runs when the match resumed again. Gulbarga Mystics touched the score in 6.3 overs without losing any of their wickets. Chasing the revised target, Luvneet Sisodia hit 58 runs in 24 balls and his partner Nikin Jose 34 in 15 balls to taste victory over Shivamogga. This was their fourth consecutive loss. The Mystics have won 2 out of the 4 matches they have played in this tournament. We have another news from Bengaluru. The National Gallery of Modern Art in Bengaluru had organized ar.bo.re.tum tree walk for the public to help them familiarize with the flora and fauna, field methods and data collection. This guided tour in the art gallery campus provided basic understanding of the common and uncommon trees that grow on the 3-acre campus. The gallery, which has a unique ambience and aesthetics, is home to tamarind, jackfruit, jamun and sandalwood trees. It houses some marvelous paintings and sculptures of earlier times. It showcases the work of many modern and contemporary Indian artists. It hosts various art workshops, film screenings and seminars throughout the year. Hyderabad News Now. In Telangana, low-lying areas have been inundated at several places in Adilabad, Khammam and Mancherial districts yesterday due to incessant heavy rains that are lashing for the past few days. The downpour caused waterlogging on the roads and inundation in low-lying areas at several places. Rivulets and other are on spate, leading to disruption of road links between villages. Officials estimate the loss at hundreds of crores as work to rebuild the roads is going on. State Roads and Buildings Minister K. Venkat Reddy reviewed the situation yesterday with senior engineers. He said the damage has been reported at 454 spots covering 629 kilometers of the road network. Of these, 22 stretches were washed away, with traffic restored on 4 through temporary measures. Connectivity disruptions at 108 critical points have been partially resolved, with 71 locations already cleared. He asked engineers to conduct immediate inspections at culverts, causeways and bridges and to closely coordinate with the police, irrigation, revenue, electricity and Panchayat Raj departments.
श्रोताओं, आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की। इधर राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आज बादल छाए रहने और तेज बारिश की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में भी आज गरज के साथ बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुना रही हैं सुभद्रा।
यस मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन ऑफ थंडरस्टॉर्म। मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 27। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द टेम्परेचर विल हैव अ बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 22 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
जी, जैसा कि श्रोताओं, पूरे देश में अभी बारिश का माहौल है, तो अभी आपको ये सलाह दी जाती है कि जैसे भी आप घर से बाहर निकलें अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करें, तो उस दौरान गाड़ी को धीमे चलाएं और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। इसके साथ ही अब नज़र डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर। तो सबसे पहले बात हवाई द्वीप की। हवाई द्वीप में आज ही के दिन 1858 में पहला बैंक खोला गया था।
1903, जर पुलित्ज़र न्यूज़पेपर एडिटर पब्लिशर डोनेट्स $1 million to Columbia University and begins the Pulitzer Prizes in America that started in the year 1917. 1944, Indian Viceroy Viscount Bevel rejects Gandhi's request to discuss war support in return for India's Indian independence. And on this day in 1945, Indonesia proclaimed its independence from Dutch colonial rule, a pivotal moment that led to the establishment of the Republic of Indonesia. And again in 1945, English author George Orwell published Animal Farm, anti-utopian satire that became a classic.
श्रोताओं, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी आज ही के दिन स्वदेश रवाना हुई थी।
एंड इन द ईयर 1960 द बीटल्स द फैब फोर performed outside of their native England for the first time and performing under their new name for the first time, taking up a three-month residency at Indra Club in Hamburg, Germany. 1969 history was made this day when iconic music festival Woodstock came to a close. The three-day music festival became a milestone in music history. And 1970, this day, the first microwave link, which was set up without foreign assistance, was commissioned between Asansol, Dhanbad and Ranchi. And 1982 this day, the first commercially pressed compact disc was pressed at a Philips factory near Hanover, Germany.
जी, और खेलों के इतिहास में आज का दिन एक बड़ी उपलब्धि के साथ दर्ज है। दरअसल पेइचिंग ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका के तैराक माइकल फिलिप्स ने वर्ष 2008 में आज ही के दिन मानव कौशल का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो दुनिया के तमाम खिलाड़ियों के लिए आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। 7 साल की उम्र से तैराकी के गुर सीखने वाले फिलिप्स ने एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
Yes, we are starting with a tribute to music maestro Pandit Jasraj, a luminary in the realm of Hindustani classical music. His profound artistry enriched the cultural tapestry of India for decades, friends. And of course, he was acclaimed for his powerful and emotive voice as well as improvisational abilities.
जी.
He left us, Mukesh, this day,
जी.
5 years ago at the age of 90.
Yeah. जी. श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पंडित जसराज को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा गया। शास्त्रीय गायन के इतर पंडित जसराज ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी गाने गाए। उन्होंने पहली बार साल 1966 में आई फिल्म लड़की सह्याद्री में अपनी आवाज दी। डायरेक्टर वी शांताराम की इस फिल्म में उन्होंने वंदना करो अर्चना करो भजन को राग अहिर भैरव में गाया था। उन्होंने दूसरा गाना साल 1975 में आई फिल्म बीरबल माय ब्रदर में गाया। इसमें उन्होंने भीमसेन जोशी राग मालकौन में जुगलबंदी की। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने पहली बार सन 2008 में रिलीज किसी हिंदी फिल्म के गीत को अपनी आवाज दी। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म 1920 के लिए उन्होंने अपनी जादुई आवाज में गाना गाया। पंडित जसराज ने इस फिल्म के प्रचार के लिए वीडियो के गीत वादा तुमसे है वादा को अपनी दिलकश आवाज दी।
And 1932, birth anniversary of Trinidadian Indian Nobel laureate Sir Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul, that's V.S. Naipaul, who was often referred to as the teacher of new English verses. His legacy lives on through his literary contributions that continue to captivate and inspire readers globally.
Mm-hmm.
Of course, his notable works included A Bend in the River, A House for Mr. Biswas, Beyond Belief, Islamic Excursions Among the Converted Peoples, and many more.
जी, आज पुण्यतिथि है महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मदनलाल ढींगरा की। स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए भारत माता के कितने ही सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। उन्हीं महान शूरवीरों में अमर शहीद मदनलाल ढींगरा का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने के योग्य है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ। मात्र 25 साल की उम्र में वे देश के लिए बलिदान हो गए थे। उनके पिता दित्तामल जी पेशे से एक सिविल सर्जन थे और उनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ था। वहीं उनकी माता भारतीय संस्कारों को मानने वाली महिला थी। उनका परिवार अंग्रेजों का खास और विश्वास पात्र माना जाता था, लेकिन मदनलाल ढींगरा का स्वभाव इसके उलट था। साल 1909 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चल रहा था। 1 जुलाई को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के एनुअल फंक्शन में बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम के दौरान जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हट कर्नल वायली कार्यक्रम में पहुंचे, वैसे ही मदनलाल ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दाग दी। हत्या के मामले में उन पर मुकदमा चला। इसके बाद 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटविले जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई और देश के लिए वो शहीद हुए।
And friends, now the tragic end of drummer for the pop rock band Boston, Sib Heshian. This brilliant drummer actually collapsed while performing on cruise ship. This musician had been booked as part of Legends of Rock themed cruise, which he collapsed without warning partway through his act. This, of course, happened on March 22nd, 2017. And today happens to be his birth anniversary. He took birthday this day, August 1949. He has a track called Don't Look Back. And of course, that was the name. That's the name of the song. But you know, it's difficult to leave those gems alone, which were made years ago.
श्रोताओं, आज जाने माने साहित्यकार अमृतलाल नागर की जयंती है। नागर जी का जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा के गोकुलपुरा में हुआ। 55 वर्ष के लेखन काल में उन्होंने बेहद विस्तृत और वैविध्यपूर्ण साहित्य रचा। बाल साहित्य, कविताएं, कहानियां, उपन्यास, व्यंग्य, अनुवाद, संपादन, संस्मरण नाटक, रेडियो नाटक और फीचर, साहित्य की ऐसी कौन सी विधा है जो नागर जी ने नहीं रची। इसी रचना प्रक्रिया की शुरुआत 1932 में हुई। पहले मेघराज इंद्र के नाम से उन्होंने कविताएं लिखी। तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच और निबंध भी उन्होंने लिखे। कहानियां मूल नाम अमृतकाल नागर से ही उन्होंने लिखी। पहला कहानी संग्रह वाटिका वर्ष 1935 में उनका प्रकाशित हुआ। 1956 में प्रकाशित बूंद और समुद्र बड़ा उपन्यास है, जो लखनऊ के चौक मोहल्लों और गलियों के किरदारों से रूबरू करवाता है। 1972 में आया उनका उपन्यास मानस का हंस और 1977 में प्रकाशित नाचो बहुत गोपाल नागर जी का प्रसिद्ध साहित्य माना जाता है। 1980 में रचा गया खंजन नयन उपन्यास भक्त कवि सूरदास की जीवनी पर आधारित है उनका।
A very fine soul singer from Birmingham, Alabama, rose to become the founder member of lead singer of Temptations. But sadly, friends, this baritone-voiced Paul Williams left too soon when he was just 34 years of age. Way back in 1973. As a member of the Temptations, Paul Williams was posthumously inducted into the Rock and Roll Hall of Fame, the Vocal Group Hall of Fame, and the Rhythm and Blues Music Hall of Fame. And guitar virtuoso Eric Johnson from Austin, Texas, celebrates his birthday today. And of course, this solo guitarist earned a Grammy for his very first single, Cliffs of Dover, that's playing in the background. This, of course, was a best rock instrumental performance. That's what the sample. Here it goes.
श्रोताओं, आज जन्मदिन है हिंदी पर अपनी जबरदस्त अदाकारी के हुनर के लिए विख्यात अभिनेता सचिन पिंगवाकर की। सचिन ने अपने करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में कर दी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सचिन ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। सचिन ने राजा परांजपे की मराठी फिल्म हा माझा मार्ग एकला में पहली बार काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाल अवस्था में ही कई मराठी फिल्मों में काम किया। सचिन को अपनी जिंदगी का पहला लीड रोल बतौर हीरो फिल्म गीत गाता चल में मिला था। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी सारिका। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसकी सफलता के बाद मानो सचिन की तो लॉटरी ही लग गई थी। सचिन को लीड एक्टर के तौर पर कई फिल्में मिली। ये दोनों कलाकार फिर साल 1976 में बालिका वधु, कॉलेज गर्ल जैसी फिल्मों में साथ आए। नदिया के पार भी उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से एक है।
गुजर गाड़ी हाकन दे हाकन दे।
श्रोताओं, सचिन ने लीड रोल के अलावा कई फिल्मों में अच्छे सपोर्टिंग रोल भी निभाए। उन्होंने त्रिशूल, शोले, अवतार, सुरसंगम और सत्ते पर सत्ता जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया।
Way back in the 80s, a ladies only pop rock act thrilled fans with their very cool sound. The Go-Go's were popular in some countries, but then when the main singer Belinda decided to go solo, she hit the international rock charts instantly. She celebrates her birthday today, friends. Summer Rain is what one of her hits. Here goes.
श्रोताओं, आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए मुकेश और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned, friends, for coming up now with Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in, friends. Have a great day.
Namaskar. Namaskar.